नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान के सियासी, अवामी और सहाफ़ती हलकों की तवज्जो हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के अमल पर मरकूज़ है। जुमेरात को हुकूमत और तालिबान दोनों की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान पहले दौर के मुज़ाकरात अंजाम पाए। हुकूमती वफ्द और ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने मुज़ाकराती अमल पर इजहार इत्मीनान किया है, लेकिन इसके बावजूद इस बारे में अभी शकूक व शुबहात बरकरार हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा या नहीं। इस शक को उस वक्त मज़ीद तकवीत मिली जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्ला शाहिद का ये बयान सामने आया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मकसद पाकिस्तान में कानून शरीयत का नफाज है। उन्होंने कहा कि तालिबान को शरीयत के अलावा और कोई कानून कबूल नहीं है। इसी के साथ लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने भी ऐलान किया है कि वो उस वक्त तक मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होंगे जब तक नफाज शरीयत को मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ तालिबान की नुमाइंदगी करते हैं और इस ग्रोह की मुज़ाकराती कमेटी के बुनियादी और अहम तरीन रुकन हैं। उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए आईनी हदूद की बात की गई तो मुज़ाकरात में तातुल पैदा होगा, और यह कि वो नफाज शरीयत के मुतालबे से हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। उधर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हैं, जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बड़े हामियों में शुमार किए जाते हैं, कहा है कि वो तालिबान की तशरीह इस्लाम से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि आईने पाकिस्तान शरीयत का ज़ामिन है, लेकिन जाहिर है कि जब तालिबान नफाज शरीयत की बात करते हैं तो उनका मतलब उस शरीयत का नफाज होता है जिस पर वो यकीन रखते हैं। और पाकिस्तान के अवाम, दानिश्वरों, उलमाए किराम और सियासी हलकों की अक्सरियत तालिबान के तसव्वुरे शरीयत के ताल्लुक से ज़बरदस्त तहफ्फुज़ात रखती है, बल्कि उन्हें इस हवाले से शदीद तरीन खदशात लायक हैं। और वो समझते हैं कि तालिबान का नज़रिया शरीयत वही है जो तकफीरी गुरोहों का नज़रिया है। बहरहाल, आज के प्रोग्राम में हम पहले मुज़ाकराती अमल का जायज़ा लेंगे कि अब तक इसमें कितनी पेशरफ्त आई है, पाकिस्तान के अवामी और सहाफ़ती हलकों का मुज़ाकरात के बारे में नज़रिया क्या है, तालिबान के नफाज शरीयत के मुतालबे पर हुकूमत का रद्द अमल क्या है, और तालिबान ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। इन हालात में क्या हुकूमती वफ्द आईन को बाईपास करके तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाना चाहेगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
गुमगू और तजब्जुब की कैफियत में आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान की कायम करदा मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान जुमेरात को पहली बार एक खुफिया मकाम पर मुज़ाकरात हुई, जिसका तवक्को के मुताबिक फौरी तौर पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। ताहम ये कहा गया कि दोनों कमेटियों के अरकान ने मुज़ाकरात के बारे में अपना अपना मौक़िफ़ बयान करके बात खत्म कर दी। मुलाकात के बाद प्रेस को जारी किए जाने वाले मुश्तरका एलामिये के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात में 5 निकात उठाए हैं। हुकूमती कमेटी का पहला नुक्ता ये था कि मुज़ाकरात आईन के मुताबिक होने चाहिए। दूसरा नुक्ता ये था कि मुज़ाकरात का दायरेकार सिर्फ शोरिश ज़दा इलाकों तक महदूद होगा और उनका इतलाक पूरे मुल्क पर नहीं होगा। तीसरा नुक्ता ये कि अमन व सलामती के मनाफी तमाम सरगर्मियाँ खत्म की जाएँ। चौथा नुक्ता ये था कि क्या हुकूमती कमेटी को तालिबान की निगरान कमेटी से भी बातचीत करना होगी। और पाँचवा नुक्ता ये कि मुज़ाकरात का अमल तवील नहीं होना चाहिए क्योंकि कौम खुशखबरी सुनने की मुंतजर है। दूसरी जानिब तालिबान की 3 रुकनी कमेटी ने हुकूमत की कमेटी के सामने 3 निकात रखे। तालिबान की कमेटी का पहला नुक्ता ये था कि हुकूमती कमेटी का दायरेकार और मैंडेट क्या है। दूसरा नुक्ता ये था कि हुकूमती कमेटी तालिबान के मुतालबात मनवाने की कितनी सलाहियत रखती है। जबकि तीसरा नुक्ता ये कि वजीर आजम और आर्मी चीफ से तालिबान कमेटी की मुलाकात कराई जाए। तालिबान की नामजद करदा मुज़ाकराती टीम के सरबरा मौलाना समीउल हक का कहना था कि वो हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले निकात वजीरिस्तान जाकर तालिबान के सामने रखेंगे और उस पर तालिबान से बातचीत करेंगे। तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान अम मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज़ होना थे। ताहम तालिबान की नामजद करदा 5 रुकनी कमेटी के 2 अरकान ने टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, जबकि वक्त और जगह के बारे में भी फरीकैन के दरमियान इत्तेफाक राय न होने की वजह से मुज़ाकरात मौखर कर दिए गए थे। अब इत्तला है कि तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज ने मुज़ाकरात में कुरान और सुन्नत को शामिल किए जाने तक मुज़ाकराती अमल के बायकॉट और उससे अलहदगी का ऐलान कर दिया है। مولانا عبدالعزیز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا تو پھر مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں تو پھر مذاکرات کیسے کریں گے۔ ادھر طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ طالبان پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ بی بی سی اردو ویب سائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ شریعت کے لیے ہی لڑ رہے ہیں، اور مذاکرات کریں گے تو بھی شریعت کے لیے کریں گے۔ مولانا عبدالعزیز کی مذاکرات میں شمولیت سے انکار کے بعد نمائندہ کمیٹی کے بارے میں شاہد اللہ شاہد کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی ان کے نمائندے ہیں اور مولانا عبدالعزیز کا کہنا غلط نہیں ہے۔ ان بیانات سے طالبان اور ان کی نمائندہ ٹیم کی مجموعی سوچ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ طالبان ماضی میں بھی آئین پاکستان کے تحت مذاکرات سے انکار اور ملک بھر میں اپنی من پسند شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ یہ بات مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی واضح تھی کہ حکومت پاکستان ملکی آئین کے تحت مذاکرات کی بات کرے گی اور طالبان اس شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کریں گے جسے وہ اور ان کے حامی شریعت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی واضح تھا کہ حکومت پاکستان آئین سے ماورا مذاکرات کو قبول نہیں کر سکتی اور نہ ہی طالبان اپنی من پسند شریعت کے نفاذ کے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن اس کے باوجود فریقین نے مذاکرات کے لیے آمادگی اور کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کر کے بزوں میں خیش حالات کو اپنے حق میں سازگار بنانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کا اعلان کر کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے والوں کے منہ بند کر دیے ہیں، جبکہ طالبان نے مثبت اشارے دے کر ملک کے اندر اس اجماع کو بننے سے روک دیا ہے جو قبائلی علاقوں میں ان کے خلاف فوجی آپریشن پر منتج ہو سکتا تھا۔ بعض حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مذاکرات کا کھیل کھیل کر دونوں فریق وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت قبائلی علاقوں میں آپریشن کے لیے مناسب وقت اور طالبان جنگ کی تیاری کے لیے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر منظور رضوی۔ اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جائے گا ممتاز سیاستدان اور تجزیہ نگار جاوید صدیق سے، اور ہمارے ساتھ ہی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ایک اور ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس سے بھی رابطہ برقرار کیا جائے۔ تو چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار منظور رضوی صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ رضوی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے عمل سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ یہ عمل بالکل ایک اشک شوئی کے برابر ہے، صرف یہ ہے کہ چند ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا دنیا میں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم امن کے خواہ ہیں، یہ سارا ڈول ڈالا گیا ہے۔ اس سے جو بڑے بڑے نقصانات اب تک سامنے آ چکے ہیں، میں ذرا ان کی طرف مختصر اشارہ کر کے پھر عرض کروں گا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قاتلوں کو اور ڈاکوؤں کو ایک قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، اور وہ ریاست کے مقابلے میں ان کو وہی مقام حاصل دے دی مقام حاصل ہو گیا ہے کہ جو کسی ایک ایسے فریق کا ہوتا ہے کہ جو فریق کسی نظریے کی بنیاد پر یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا لوگوں میں مقبولیت کی بنا پر اپنا کوئی نہ کوئی مقام رکھتا ہو۔ یہ حالت طالبان کو قطعی طور پر میسر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے جو اب مطالبات سامنے آ رہے ہیں، اگر آپ شروع میں دیکھیں کہ طالبان کا پہلے مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ امریکی مداخلت ہوئی ہے ہمارے ملک یعنی افغانستان میں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ امریکی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے ہم پاکستانی حکومت کے خلاف بھی اسی طرح جہاد کریں گے جس طرح کہ امریکی حکومت کے خلاف کریں گے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہ تمام معاملات چونکہ امریکی فوجی جا رہے ہیں، اب 214 میں کسی وقت بھی ان کا انخلاء شروع ہو جائے گا، ہو بھی چکا ہے۔ تو اب یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اس لیے کھیلا جا رہا ہے تاکہ طالبان کو یہ موقع ملنے کا موقع دیا جا رہا ہے طالبان کو کہ آپ کی بھی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، آپ کی بات بھی مانی جائے گی، اور آپ کی کوئی نہ کوئی قانونی پوزیشن اور قانونی ایک حیثیت آپ کو دے دی گئی ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر چند کسی قسم کے قاتل اپنا ایک گروہ منظم کر لیں، ان کے پاس کہیں سے اسلحہ آ جائے، اور پھر وہ اپنی منمانی کاروائیاں کر کے ایسے ظلم و ستم بے کس لوگوں پر اور نہتے بچوں پر، خواتین پر، یعنی ان طبقات پر کہ جن کو ہمارے دین نے اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ غیر مسلموں تک کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے، وہاں تک یہ پہنچ کر ظلم و ستم کے ایک پہاڑ توڑے پاکستان کے عوام، بے نہتے عوام پر، تو ان کو یہ مقام دے دیا جائے کہ آئیے ہم آپ سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ اب آپ نے طالبان کے جو نمائندے مقرر کیے گئے ہیں، ذرا ان کی حیثیت کو دیکھیے، طالبان اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے اندر میں سے جو ان کے برسرے پیکار لوگ جو ہیں، جو عملی طور پر ان کی تحریک کے سرغنہ ہیں یا عملی طور پر ان کے کمانڈر ہیں یا ان کے کسی شعبے کی رہنمائی کر رہے ہیں یا ان کی کسی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو انہوں نے نامزد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ لوگ انہوں نے نامزد کر دی ہیں جو پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں اور جن کی حیثیت جو ہے وہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ چند مختصر سے حلقوں میں ان کا سنوائی ہے، اور چند مختصر سے حلقوں میں ان کا کوئی اگر اثر و رسوخ یا احترام ہے تو وہ بالکل محدود سا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ طالبان نے ان مذاکرات کو کس درجے کی اہمیت دی ہے، کس درجے کی حیثیت دی ہے۔ تو اس لیے جب چوں خشت اول جو معمار نے چونکہ پہلی اینٹ ہی الٹی رکھ دی ہے، تو اب آپ اندازہ لگائی کہ یہ عمارت کی نہج کیا ہوگی۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس سے مطلب صرف طالبان جو ہے نا وہ اس پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ ان مذاکرات کے ذریعے سے اگر کوئی ان کی اشک شوئی کی جائے۔ طالبان کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت، دیکھیے یہ حقیقت ہے، اس سے بالکل انکار
جی
نہیں کیا جا
رضوی صاحب، طالبان کے ایجنڈے پر بھی ہم گفتگو کریں گے
نہیں ہوں گے،
اور آپ سے ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ اس وقت ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر سیاستداں اور ممتاز تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب سے۔ جاوید صدیق صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل کس مرحلے میں ہے؟
دیکھیں، یہ تو ابھی ابتدا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکلات کے بعد پہلا ایک اجلاس ہوا ہے دونوں فریقوں کا۔ ایک جو حکومت کی نامزد کمیٹی ہے چار ارکان پہ مشتمل، اس کا اور طالبان کے تین نامزد ارکان کی ایک پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، لیکن شکوک و شبہات اور تحفظات کا بھی اظہار ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جو تین رکنی کمیٹی تھی طالبان کی، اس میں سے دو حضرات جو ہیں، ایک تو عمران خان ہیں، انہوں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی، پھر ایک جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی کفایت اللہ تھے، ان کو بھی جے یو آئی نے کہا کہ وہ ان کو کوئی اعتراضات تھے، اور مفتی کفایت اللہ بھی اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس طرح سے ایک تو پہلے اجلاس میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کی کمیٹی، حکومتی کمیٹی کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی کمیٹی جو ہے یہ تین ارکان پہ مشتمل ہے، باقیوں کا کیا بنا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا جو حکومت کی کمیٹی ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ با اختیار ہے، اور جو بات چیت ہوگی کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں پہلے اجلاس میں، اور اس کے علاوہ طالبان کی کمیٹی جو مولانا سمیع الحق پہ مشتمل ہے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، اور تیسرے جو ہیں صاحب ان کے، وہ تینوں جو ہیں انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں، ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر سے اور آرمی چیف سے اور آئی ایس آئی کے چیف سے ملیں اور کچھ ایشورنسز یا یقین دہانیاں جو حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی چاہیں گے کہ طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، چوٹی کی لیڈرشپ ہے، اس سے ملا جائے۔ تو یہ پہلے اجلاس کی تو یہ روداد ہے۔ بہرحال ایک اس پہ اتفاق ہوا کہ ہم بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آج کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو دو حضرات ہیں طالبان کی کمیٹی کے، ان میں ایک جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم ہیں اور ایک جے یو آئی کے ہیں مولانا یوسف شاہ، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں ان کو ایک حکومت نے ہیلی کاپٹر فراہم کیا ہے، اور وہ اپنے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے شمالی وزیرستان چلے گئے جہاں کہ وہ طالبان کی لیڈرشپ سے بات کریں گے، और जो हुकूमत की तरफ से पैगामात मिले हैं या जो भी उनके राबते हुए हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ करेंगे। ये एक मैं समझता हूँ कि इब्तदा है, लेकिन खदशात बहुत हैं। एक नई डेवलपमेंट जो है, एक नया वाकया ये रूनमा हुआ
जी
कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो है लाल मस्जिद वाले, आपको मालूम है कि लाल
जी
मस्जिद पे ऑपरेशन भी हुआ था, उन्होंने कल एक सरप्राइज दिया, एक हैरान कर दिया ये कि असल में जो बातचीत है वो इस्लामी निज़ाम, शरई निज़ाम के हवाले से होगी। अगर ये एजेंडा नहीं होगा, यानी शरई निज़ाम का नफाज नहीं होगा, तो वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उनकी इस बात की तस्दीक जो है तालिबान के तर्जमान शाहिदुल्ला शाहिद जो हैं उन्होंने
जी
की कि हाँ जी, हमारी जो सारी कोशिश है और हमारी सारी जो सही है वो ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरई निज़ाम हो और उसी के लिए तो हमने जंग की है। तो एक ये एक नया मोड़ आ गया है इस बातचीत में के इब्तदाई दौर में। क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है, जिसने मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त की है, वो शरई निज़ाम के ऊपर जो है किस तरह की बातचीत होगी? क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, के जिसे तमाम उलमा ने उस वक्त के 1973 के जितने भी उलमा थे, तमाम मकातब फ़िक्र के, उन्होंने इसको एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया था। अब अगर तालिबान उसकी कोई और ताबीर या तशरीह करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस्लामिक नहीं है और इसमें तरमीम होनी चाहिए और एक ख़ास शरई निज़ाम जिसका वो तذکرہ करते हैं या जिसको वो सही समझते हैं, अगर वो इंसिस्ट करते हैं इसके ऊपर और इस पर इसरार करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए कि इसमें फिर बड़ी ताबीरें और तशरीहात जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये बातचीत जो है ये कामयाबी से आगे बढ़ेगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पाकिस्तान के, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लाहौर में मीडिया से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि उनके ख्याल में ये बातचीत जो है कामयाबी से आगे बढ़ रही है और उन्होंने तवक्कुआत का इज़हार किया है। लेकिन बहुत से जो तजज़ियाकार हैं और मुज़ाकरात पे जिनकी गहरी नज़र है वो समझते हैं कि इसमें बड़ी मुश्किलात हैं और इत्तफाक राय का होना जो है खासा दुश्वार होगा। अलबत्ता पाकिस्तान की जो कौम है उसकी ख्वाहिश है कि कम अज़ कम पाकिस्तान में अमन कायम हो और सीज़ फायर हो और ये धमाके जो है जिनमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस
जी
है और दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर कम अज़ कम हमले बंद हो और अमन की फ़ज़ा कायम हो। इसलिए एक तरह से एक ख्वाहिश तो ज़रूर है कि पाकिस्तान में अमन हो, लेकिन ये दुशवार रास्ता है, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं और इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबिता हमारा बरकरार हुआ है डॉक्टर कंदील अब्बास साहब से। आइए देखते हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी कंदील अब्बास साहब, तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के अमल के ताल्लुक से आप कितने पुरुम्मीद हैं? ये अमल आपको कितना आगे बढ़ता और पेशरफ्त करता नज़र आ रहा है?
मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता एक दहाई से जो हालात पाकिस्तान में गुजर रहे हैं
जी
और वो उसमें जो शिद्दत पाई जाती थी उसको अगर हम सामने रखें तो ये अमन का अमल इतना आसान नहीं तसव्वुर किया जा सकता और इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां और बहुत ज्यादा मुश्किलात हायल हैं। लेकिन एक बड़ी खुश आयन बात जो इस सिलसिले में पहले इजलास में नजर आई वो ये थी कि दोनों पार्टियों ने इस बात पे इत्तेफाक किया था कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क के अंदर होंगे और ये बात अगर इसी तरीके से आगे लेकर दोनों पार्टियां चले तो फिर तो कामयाबी की बहुत ज्यादा तवक्कुआत की जा सकती थी। लेकिन इब्तदाई से ही हमने देखा कि तालिबान कमेटी के बाद मेम्बरान ने इस पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया और खुद तालिबान की तरफ से भी इस पर तहफ़ुज़ात आए हैं, जिसकी वजह से जो उम्मीद की किरण एक पैदा हुई थी उसको लोग मद्देनजर देख रहे हैं। इसलिए जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनके साथ मुजाकरात करना जाहिर पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। और दूसरी बात ये थी कि बहुत से पाकिस्तान के जो तजिया निगार थे उनका ख्याल ये था कि एक तरफ तो तहरीके तालिबान को एक कलदम तंजीम करार दिया गया है لیکن دوسری طرف جب ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ایک قانونی حیثیت کو مانا جا رہا ہے, یعنی یہ بھی پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی تھی. لیکن اس میں اکثر تجزیہ نگار ایک لچک دینے کے حق میں تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر طالبان پاکستان کے آئین کو مان لیتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسری طرف نفاذ شریعت کے نام سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا میں پاکستان کی بہت سی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھے تو ان مذاکرات سے کوئی بہت زیادہ میرے خیال میں امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی.
جی بہت بہت شکریہ. اور لندن اسٹوڈیو چلتے ہیں ڈاکٹر منظور رضوی. رضوی صاحب, جناب آپ طالبان کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں طالبان ان مذاکرات میں کس ایجنڈے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟
عرض یہ ہے کہ طالبان کا اگر آپ ایجنڈا پوچھنا چاہتے ہیں تو کل ہی مولانا عبدالعزیز کی گفتگو سن لیجئے, جو ان کی طرف سے یہ نفاذ شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مبلغ تو یہ ہے کہ ان کے نفاذ شریعت کا معیار تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب لال مسجد اور حفصہ کا واقعہ ہوا یہی مولانا عبدالعزیز اور ان کے مرحوم بھائی تھے, تو یہ ڈنڈا بردار انہوں نے ایک فوج متعین کی تھی, جا کر وہ کیسٹوں کی دکانوں میں کیسٹیں توڑتے تھے, آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں, اور لائبریری پہ قبضے کرتے تھے. یہ تو ان کا ایک معیار ہے اسلامی نفاذ شریعت کا. جس طرح ایک گاؤں کے مولوی کا ایک مبلغ علم ہوتا ہے, جس طرح کہ وہ نفاذ جس کو شریعت تامہ سمجھتے ہیں, معاذ اللہ اسی قسم کی یہ شریعت کا بہانہ لگا کر اور ایک نئی شورش اور ایک نیا یہ شوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے, اور دوسری بات آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کس معیار کے آدمی حکومت نے اور کس معیار کے آدمی طالبان نے سو کال مقرر کی ہیں. دراصل یہ دونوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, یہ مذاکرات نہیں ہو رہے, مذاکرات کے بارے میں طے کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کس طرح ہوں گے, یعنی یہ بذات خود مذاکرات نہیں ہیں, آپ یہ بات سمجھ لیجئے. اور دونوں تحت اللفظ میں یہی کہہ رہے ہیں, ان کا بین السطور جو مفہوم نکلتا ہے ان کے بیانات سے وہ یہی نکلتا ہے کہ یہ دونوں بے بس اور بے کس ہیں. ان کا براہ راست مذاکرات کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تعین کرنا ہے کہ اگر بات کوئی سیریس آگے بڑھتی ہے تو کن لوگوں کو بیچ میں لایا جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں 50-60 ہزار آدمی ایک طرف سے شہید ہو چکے ہوں اور دوسری طرف سے بھی کافی مارے جا چکے ہوں, کیا وہاں صلح و صفائی کے لیے یا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اس قسم کے آدمیوں کو متعین کیے جاتے ہیں کہ جو بالکل بے بس ہوں, بے اختیار ہوں, جن کا کوئی قطعی طور پر کوئی اثر و نفوذ ہی نہ ہو, اور پھر شروع میں ان کے اندر اختلافات کی جو باتیں ہو رہی ہیں اسی سے آپ اندازہ لائے گئے کہ یہ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں اس بارے میں. دراصل بات یہ ہے کہ ممکن ہے دونوں فریق جو ہوں وہ اپنے مطمئن نظر کو, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایک وقت کی لمبا کرنے کے لیے ان کی کوششیں ہوں, کیونکہ افغانستان جو طالبان ہیں وہ قطعی طور پر اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کو صرف ایک حیثیت دے کر اور پھر ان کو شریک اقتدار نہ کیا جائے. ان کا مقصد صرف اگر اتنا ہی ہوتا کہ مذاکرات کی صرف میز پر ہی آنا مقصود ہوتا تو وہ اس سے پہلے بھی حاصل کر چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا 204 میں ایک جنرل نے ملا نیک محمد کو اپنے سامنے بٹھا کر تمام چیزیں کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد وہاں معاہدہ ہوا, اور یہی مولا فضل اللہ جو تھے اس کو تاخت و تاراج کرنے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اسی طرح اور بھی کوئی معاہدات ہوئے. دراصل طالبان کا مقصد قطعی طور پر یہ لوگوں کو بالکل ایک نئی ڈگر پر ڈال دیا گیا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے کہ طالبان جو ہیں وہ امن کی خواہش کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور آئندہ سے وہ بے دریغ قتل و غارت سے باز آ جائیں گے. قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کے افغانستان کے جانے کے بعد افغانستان جو ہے ایک پکے پکائے پھل کی طرح ان کی گود میں آ پڑے گا. ان کے ساتھی جو ہیں یقیناً یا براہ راست ان کی وہاں حکومت ہوگی یا ان کا اتنا عمل دخل ہوگا. وہ چاہتے یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے کو بھی ملا کر اور افغانستان کے حصے کو ملا کر اپنی طالبان کی ایک عمارت قائم کی جائے جہاں ان کا امیر ہو, جیسے کہ پہلے مولانا ملا عمر تھے اور اب تک وہ موجود ہیں, باقاعدہ حیات ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے خطے پر ان کی جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کی حکمرانی قائم ہو, اور وہ جس قسم کا دین لانا چاہتے ہیں تو وہاں وہ قائم کر سکیں. اور صرف دین ہی مقصد نہیں ہے. اب دیکھیے گاؤں کے مولوی جو تھے उनके पास इतने रियालों की और डॉलरों की बहुतात आ गई है, क्या उनको वो छोड़ने पर आसानी से तैयार हो जाएंगे? उनके पास ऐसी ऐसी कारें, ऐसी ऐसी सहूलतें, ऐसी ऐसी तयुजात के सामान मौजूद हैं, इतनी सहूलतें उन्हें मैसर हैं, क्या वो इन चीज़ों को यकदम अपने हाथ से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? कतई तौर पर नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ हम मेज़ की आ जाएं और गुफ्तगू करें, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कतई तौर पर इन बातों पर कतई तैयार नहीं होंगे। महज मकसद उनका ये है कि हमें वो हैसियत दे दी जाए कि जो एक गवर्नमेंट की जो डिफेक्टो या डी जूर एक हुकूमत होती है, कि हम एग्जाइल के अंदर या जिस तरह के अब वो कर रहे हैं कि हम एक मुक्तदर कुवत है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम ना बागी हैं, ना हम शोरिश पसंद हैं, ना हम शोरिश करने वाले हैं, बल्कि हम एक ऐसी कुवत है कि जो कुवत अपने अंदर ये इख्तियार और ये ताकत रखती है कि अपनी बात को वो जिस तरह चाहे मनवा ले, और हुकूमत की सतह पर हम बात करेंगे, बराबरी की सतह पर बात करेंगे, वो इससे कमतर दर्जे को कभी कबूल करने पर तैयार नहीं होंगे। अब ये अलग बात है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है।
जी शुक्रिया रिजवी साहब, हम आएंगे। जावेद सिद्दीक साहब,
जनाब
जनाब ये जो तालिबान ने अपने नुमाइंदे मुअय्यन किए हैं मुज़ाकरात के लिए, मौलाना समीउल हक साहब, प्रोफेसर इब्राहिम और मौलाना अब्दुल अजीज, ये लोग तो वो हैं जो खुद पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के मुआशरे में रहते हैं, पाकिस्तान के मुआशरे का जुज़ हैं, और पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं और जो हुकूमती अरकान हैं उनके साथ इनके रवाबित रहे हैं। इमरान खान का नाम भी शामिल किया गया था, इमरान खान ने साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा कि तालिबान अपने अफराद मुअय्यन करें मुज़ाकरात के लिए, तो तालिबान ने अपने अफराद मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं मुअय्यन किए?
देखिए इसका थोड़ा पस मंज़र ये है कि जब हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द की, तो उसमें आप देखें कि उसमें एक साफ़ी और एक कालम निगार हमारे दोस्त भी हैं, वो इरफान सिद्दीकी, वो हुकूमत में जा शामिल हुए और वो इस वक्त जो है इस कमेटी के कोआर्डिनेटर हैं और प्राइम मिनिस्टर के खसूसी मावन भी हैं, और उसके अलावा एक आईएसआई के सबक सरबरा आईएसआई के सबक अफसर हैं मेजर आमिर, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया। मौलाना समीउल हक जो हैं किसी हद तक मैं समझता हूँ कि उनका जो मदरसा या कोड़ा खटक का उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत से तालिबान जो हैं, तालिबान लीडर जो है इस वक्त अफगानिस्तान में और शमाली वजीरिस्तान में हैं, वो इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। तो एक ख्याल ये है कि मौलाना समीउल हक जो है उनका असर और रसूख है तालिबान के ऊपर, तो उनके ज़रिए एक राबता जो है वो कायम किया जा सकता है और राबता मौसर होगा, उनको तो इसलिए शामिल किया। इमरान खान जो है मुसलसल ये कहते रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए और जंग का रास्ता जो है उसको छोड़कर मिलिट्री ऑपरेशन की बजाय हमें बातचीत के ज़रिए ये मसला हल करना चाहिए, तो हुकूमत ने उनको भी नॉमिनेट कर दिया, और मौलाना समीउल हक को इसलिए कि उनके मदरसे में बहुत से तालिबान लीडर जो हैं वो पढ़ के गए हुए हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब जो है एक साफ़ी हैं, मेजर आमिर साहब जो हैं उनके वालिद जो हैं वो भी यहाँ पे स्वाबी में पंज पीर एक जगह है, वहाँ पे उनके वालिद जो हैं वो एक आलम दीन थे और उनके भाई जो हैं वो भी एक मदरसा चलाते हैं, तो उनका भी तालिबान के साथ एक राबता या ताल्लुक है। तो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है और उसमें प्रोफेसर इब्राहिम साहब जमात इस्लामी की तरफ से जो हैं उनको भी शामिल किया गया, JUI के मुफ्ती कफायतुल्ला को शामिल किया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा मुफ्ती कफायतुल्ला इमरान खान जो हैं ये अलग हो चुके हैं। तो हुकूमत ने एक कमेटी तो बनाई है, लेकिन ये कमेटी जो है ये कहना कि बाख्तियार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी ये कमेटी जो है मुझे रिपोर्ट करती है, मुझे एतमाद में लेती है और मेरी निगरानी में काम कर रही है, तो इस लिहाज से ये तो है। लेकिन जिस तरह के तालिबान ने आपने कहा कि मौलाना अब्दुल अजीज़ को, समीउल हक साहब को और इनको जो है नॉमिनेट कर दिया है, उसकी एक वजह यह है कि ये फिक्री आमहंगी जो है इनके अंदर मौजूद है, एक फिक्री आमहंगी मौलाना समीउल हक साहब जो है वो और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो है और इसके अलावा प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो हैं, इनके अलावा एक साहब मौलाना यूसुफ शाह भी हैं, तो इनके और तालिबान के दरमियान जो फिक्री और नज़रियाती तौर पर एक हम ख्याल होना इनका है, ये एक दूसरे के हम ख्याल हैं, एक दूसरे के साथ इनकी फिक्र जो है वो हम हांग है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तालिबान ने एक तरह से उन पर एतमाद किया है कि वो उनके बिहाफ पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक इब्तदाई मरहला है और जब बातचीत आगे बढ़ेगी और अगर बढ़ जाती है, आगे पेशरफ्त होती है इस रास्ते में, तो फिर किसी स्टेज पर ये ज़रूर होगा कि हुकूमत और तालिबान के जो नुमाइंदे हैं वो उनके चेहरे बदल जाएंगे। शायद तालिबान जो है बराह रास्त अपने जो कुछ लोग हैं उनको शुमाली वजीरस्तान में या जनूबी वजीरस्तान में उनको आगे करेंगे, और हुकूमत भी अपनी तरफ से जो है नए चेहरे लाएगी जो बराह रास्त बातचीत करके इस कज़िये का, इस प्रॉब्लम का हल जो है वो तलाश करने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल मराहल हैं और अभी तक जो है इसके बारे में शकूक और शुबहात मौजूद हैं कि ये सारा अमल जो है ये दुरुस्त है और दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है और इसके नतायज निकलेंगे, इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहा जा रहा है और कोई बात ये यकीन से नहीं की जा सकती कि ये रास्ता जो है जो इन्होंने चुना है मुज़ाकरात का, ये नतीजा खेज होगा। बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि एक फौजी ऑपरेशन के ज़रिए, ताकत के ज़रिए इनको कुचल देना चाहिए और एक फैसला कुन सूरत हाल जो है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने एक एक वजह ये भी है ये मुज़ाकरात की कि जो हुकूमत के इस वक्त बड़े हरीफ हैं नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के, वो पीटीआई है और पीटीआई के सरबराह हैं इमरान खान। वो मुसलसल ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उन्होंने एक तरह का दबाव डाला हुआ है नवाज शरीफ साहब पर और उनकी हुकूमत पर, और उसको भी दबाव से निकलने के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो मुज़ाकरात का डोल डालते और उन्होंने मुज़ाकरात कर लिए। इसके कामयाबी के क्या इम्कानात हैं और क्या वो मतलूबा नतायज निकल सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत से मराहल बाकी हैं और अगले चंद हफ्तों में ये सूरत हाल जो सामने आएगी कि क्या ये यहाँ पे कोई पेशरफ्त होगी या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी तैयार है अगर ये मुज़ाकरात जो है कामयाब नहीं होते। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कंदील अब्बास साहब आप लाइन पर हैं जनाब?
जी
जी कंदील अब्बास साहब, देखिए ये जो मुजाकिराती टीम है हुकूमत की तरफ से, जो मुजाकिराती टीम है इसमें अगरचे सहाफ़ी हजरात हैं लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो तो वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ास हैं और उनकी बात बराह रास्त वज़ीर आज़म तक जाएगी, वो जो भी बात करेंगे उसके लिए ख़ुद वज़ीर आज़म जवाबदेह होंगे। लेकिन तालिबान ने जो कमेटी बनाई है, क्या आप ये समझते हैं कि इस कमेटी के अरकान अगर कोई बात, कोई वादा कर लेते हैं तो तालिबान उसके पाबंद होंगे?
देखिए कमेटी का जो स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ की कमेटी का जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इबहाम पाया जाता है। इसलिए कि जो हुकूमती कमेटी है उसमें बराह रास्त हुकूमती कोई भी एहलकार शामिल नहीं है, इसी तरह जो तालिबान की कमेटी है बराह रास्त तालिबान का अपना कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है, बल्कि इब्तदा में हुकूमत की तरफ से मुतालबा आया भी था कि तालिबान का कोई बराह रास्त नुमाइंदा इस कमेटी का मेंबर होना चाहिए, लेकिन तालिबान ने वाज तौर पर ऐलान कर दिया कि उनकी पहले 5 रुकनी कमेटी और फिर 2 उसमें से रुकन जो कम हुए और उसके बाद 3 रुकनी कमेटी रहेगी। उन्होंने कहा कि तमाम तर इख्तियारात इस कमेटी के पास हैं, लेकिन उसी कारण हम देखते हैं कि तो की जा रही थी कि पार्लियामेंट के कोई मेंबरान या कैबिनेट के कोई लोग हो सकता है कि हुकूमती कमेटी के मेंबर बनते तो ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी बनती थी, लेकिन इसमें भी बराह रास्त हुकूमती नुमाइंदा शामिल नहीं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक ट्रैक टू किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर ये कामयाब होती है डिप्लोमेसी यानी मुजाकरात कामयाब होते हैं तो फिर वो कोई फॉर्मल उसकी शक्ल बनेगी, लेकिन इसी मरहले पर इतनी पेचीदगियां हैं कि जो जैसा हमने देखा जो हुकूमती कमेटी के अरकान की तरफ से सिर्फ जब इस सिलसिले में तालिबान कमेटी से सवाल किया गया कि उनका इख्तियार पर मौलाना समीउल हक नाराज हो गए और उनकी तरफ से कहा गया कि आपको हमारा इख्तियार पूछने का हक हासिल नहीं है, लेकिन अब बज़ाहिर तो फिजा उनके आपस में इस हद तक बेहतर हुई है कि इरफान सिद्दीकी ने यह कहा कि पहले इजलास के बाद हमने महसूस किया कि ये दो कमेटियां नहीं बल्कि एक ही कमेटी है, बज़ाहिर तो ये कहा गया, लेकिन अगले ही दिन हमने देखा जैसा मौलाना अब्दुल अजीज ने नफाज शरीयत की बात की तो तालिबान की कमेटी असल में अब दो रुकनी रह गई है क्योंकि उनका एक डिफर उन्होंने किया है इस बात से। इस बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि जब तक बराह रास्त नुमाइंदे तालिबान के और हुकूमत के इन कमेटियों में मौजूद नहीं होंगे ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते और इससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, और अगर बराह रास्त उनके नुमाइंदे शामिल हों और एक टाइम शेड्यूल बाकायदा दे दिया जाए तो फिर तवक्को की जा सकती है कि कोई मुस्बत नतीजे किए जा सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी रिजवी साहब। जनाब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने एक तरफ तो ये कहा है कि वो तालिबान के नज़रिए इस्लाम से जो तशरीह इस्लाम तालिबान करते हैं उससे वो मुत्तफिक नहीं है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि तालिबान की जानिब से आइनी हदूद के अंदर रहकर मुज़ाकरात पर आमादगी ने दहशतगर्दी को शरीयत के नफाज से जोड़ने की कोशिशों को बेनकाब कर दिया है, यानी उन अनासिर को बेनकाब कर दिया है जो इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने तो साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में यह कहा है कि वो आइन पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते, और इसी के साथ तालिबान की मुज़ाकराती टीम के रूह रवां और अहम तरीन रुकन मौलाना अब्दुल अजीज़ ने भी साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा है कि आइन की हदूद की बात अगर की गई तो मुज़ाकरात रुक जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
अर्ज यह है कि इमरान ख़ान चूँकि एक ज़हीन और फतीन किस्म के सियासतदान हैं उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए उनकी वजह भी इनकार की यही थी कि वो कमेटी में इसलिए शामिल नहीं हुए कि उन्हें पता था कि इश्क आसान नमूद अव्वल वले उफ्ताद मुश्किल है, कि इसके अंदर काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा होंगी और इसके अंदर काफ़ी गंजलक है, तो इसलिए उनका ये कहना कि शरीयत का नफाज जो है वो तो तय हो चुका है पाकिस्तान के दस्तूर के लिहाज से, लिहाजा ये मुतालबात बाद में देखे जाए, तो इसलिए इमरान खान का ये कहना वो उनकी दूरअंदेशी का सबूत है कि वो ये समझते हैं कि अब मसला जो है लोगों के जहन में सबसे पहले क़याम अमन का है, ना ये कि उसको और मसलों के अंदर उलझा दिया जाए, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने ख़ुद शिरकत से इनकार किया और रुस्तम शाह साहब को आगे कर दिया, लेकिन रुस्तम शाह साहब को भी आगे करने का सिर्फ मकसद ये था चूँकि रुस्तम शाह साहब का जो पुराना माजी है वो काफ़ी मुलव्वस रहे हैं गुफ्तगू के अंदर, तालिबान को जानते हैं, उसी इलाके के हैं, समझदार आदमी हैं, और इसलिए उनको उन्होंने पीटीआई ने अपना एक नुमाइंदगी दे दी या कम से कम उनको कबूल कर लिया। रहा मौलाना समीउल हक की बातें, चूँकि मौलाना समीउल हक जो है ये कहना चाहिए कि मैं उन्हें ये लफ्ज़ तो वो नहीं इस्तेमाल करूँगा जो गॉड फादर कहा जाता है, लेकिन तालिबान के वो बहुत बड़े मुरब्बी भी हैं और उनके मुशफिक उस्ताद भी हैं, और उनके यकीनन उनका वो मकाम है जो किसी पाकिस्तान में किसी और आलिम को हासिल नहीं है, अगरचे देवबंदी मकतब फ़िक्र के बहुत सारे उलमा जो हैं उनके लिए मखदूम है, इसलिए मौलाना समीउल हक ने भी खुलकर ये बातें नहीं कहीं जो मौलाना अब्दुल अजीज़ ने कही है। दरअसल बात यह है कि मौलाना अब्दुल अजीज़ का मकाम वो नहीं है कि तालिबान की नज़र में भी वो कोई इतनी अहमियत रखते हों, तो इस वजह से मौलाना अब्दुल अजीज़ की बातें जो है मुझे उनके एहतराम के बावजूद ये कहना पड़ता है कि वो अपने मकाम को भी कुछ ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान जो हैं उन पर मेरा असर रसूख मौलाना समीउल हक से ज़्यादा है, हालांकि ये बात कतई तौर पर सब लोगों के सामने आया है कि मौलाना समीउल हक का जो मकाम और मर्तबा है वो बहुत ज़्यादा है तालिबान के यहाँ, और मौलाना फजल रहमान के इनकार करने की वजह भी यही थी कि मौलाना फजल रहमान ने यह सोचा था कि तालिबान से मामला करना जो है सिर्फ इतना आसान नहीं कि उनके चंद मुतालबात मंजूर कर लिए जाएं, उनका जब असली मुतालबात सामने आएंगे तो मामला और गंभीर हो जाएगा। अब देखिए कि इन सारी गुफ्तगू का मकसद ये है अर्ज़ करने का कि दो बातें बहुत आप यकीन से नोट कर लीजिए, अगर इन दो बातों में से ये बातें हो जाती हैं तो यकीनन आप समझिए कि कोई ना कोई इसका मुफीद नतीजा आएगा। वो बात यह है कि हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा मुतालबा ये होगा कि तालिबान की तरफ से ये ऐलान होना चाहिए कि हम जंग बंदी करते हैं गुफ्तगू के दौरान या अब से कोई आइंदा कोई हमला नहीं किया जाएगा आवाम पर, कहीं भी कोई शोरश का कोई हिस्सा सामने नहीं आएगा, और हम यकीनी तौर पर जब तक कि ये गुफ्तगू जारी है हम कोई ऐसा कदम नहीं करेंगे कि जिससे आवाम के जानो माल के तहफ़ के अंदर कोई उसके अंदर खतना या खदशा या उसके अंदर कोई फ़र्क पड़े। ये तो होगा हुकूमत की तरफ से उनकी ख्वाहिश होगी और गालिबन मुतालबा भी होगा। और फिर तालिबान की तरफ से जो सबसे बड़ी बात वो सामने आएगी
जी,
वो यकीन कीजिए कि वो ये होगी कि तालिबान की तहरीक को चूँकि गैर कानूनी करार दिया चुका है और उन पर पाबंदी लग चुकी है, उनका नाम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, उनको एक किस्म का गैर कानूनी और गैर आइनी शोबा करार दिया गया है, एक गैर आइनी उनको एक उनकी तंजीम को करार दिया गया है, तो उनकी तरफ से ये मुतालबा आएगा कि हमें पूरी कानूनी हैसियत देने के लिए हमारा नाम उस लिस्ट में से निकाल देना चाहिए जो गैर कानूनी और गैर आइनी तंजीमों में हमें आपने शामिल किया।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब,
अगर ये दो बातें सामने आ
जी, शुक्रिया जनाब रिजवी साहब। कंदिल अब्बास साहब
जी,
जनाब अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अब तक के मुज़ाकरात में तालिबान ने बहरहाल एक चीज़ में तो कामयाबी हासिल कर ली है कि आईन पाकिस्तान और शरीयत को एक दूसरे के मुकाबले में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है।
बिल्कुल, कुछ इस तरह के दौरे किए भी जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में देखिए एक अमूमी जो माहौल है पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातें हैं और पाकिस्तान का जो मजहबी एक इन्वायरमेंट है इसमें ये कहा जा रहा है कि बरेली मकतब और शिया मकतब जो है ये इन मुज़ाकरात की सख्त मुखालफत कर रहे हैं और जो कमेटी बनी है हुकूमत की तरफ से इन दोनों मकातिब का कोई नुमाइंदा भी उस कमेटी में मौजूद नहीं है, ये मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है और बहुत सी मजहबी जमातें भी शामिल हैं, उनकी आरा को भी इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन जहां तक तालिबान की कामयाबी का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर एक सख्त दबाव ये था कि पिछली एक दहाई के दौरान हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करके कोशिश की कि मसले को हल किया जाए, लेकिन ताकत के इस्तेमाल के बावजूद ना ये कि मसला हल नहीं हुआ बल्कि रोज बरोज हालात मजीद बिगड़ते गए और पाकिस्तान के गली कूचे में बारूद की बू आना शुरू हो गई और बहुत ज्यादा कत्लों की आहट भी हुई। लेकिन इस बुनियाद पर और इस दबाव के तहत हुकूमत ने अगरचे दो दफा इससे पहले भी कई नौ इससे पहले मुआहदे किए तालिबान के साथ, लेकिन जो एक मजमू तौर पर कोशिश की गई थी उसमें अमरीकी ड्रोन अटैक की वजह से वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। और अब हुकूमत की एक और कोशिश ये है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकल आता है तो वो बेस्ट होगा, लेकिन दूसरी तरफ फौज का एक दबाव मौजूद है अगर मुज़ाकरात के जरिए कोई हल ना निकले तो फिर फौजी ऑपरेशन किया जाए। मैं समझता हूँ कि ऑप्शन है दोनों पार्टियों के लिए, तालिबान के लिए भी और हुकूमत के बीच, अगर इस मौके को उन्होंने जाहिर किया तो इसके बहुत भयानक नतज भी निकल सकते हैं वो तालिबान के लिए भी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। बहरहाल नाजरीन ये जो रास्ता तालिबान के साथ मुज़ाकरात का हुकूमत ने अख्तियार किया है ये बहुत सख्त और बहुत मुश्किल रास्ता है, ख़ास तौर पर इस लिहाज से भी कि पाकिस्तानी मुआशरे की अक्सरियत तालिबान के नज़रिए इस्लाम और नज़रिए शरीयत से मुत्तफिक नहीं है और इस बारे में वो खदशात और तहफ़ुज़ात का शिकार है कि अगर तालिबान को ये अख्तियार दे दिया गया नफाज़ शरीयत का तो वो अपना मखसूस इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा, हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@theRateOfSaharTV.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा।